कल नित्य नीति का व्रत का उपवास रहेगा। समर्थ व्यक्ति सवेरे से पानी पी। मैं ये नहीं आदेश नहीं दे रहा है, सबकी है तो उनके जन्म तक शाम तक सभी तक पानी पीते हैं तो और उसको पानी। यदि कोई असमर्थ व्यक्ति नहीं कर सका तो वो क्या करेगा, गला भी जा सकता है।
नमो महाभद्राय कृष्ण प्रेम कृष्णाय कृष्ण प्रेम हे कृष्ण करुणा सिंह राधा सप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रणमामि आध्यात्म अंगश्यामी सदास्त मंदीकृतम पत्रंगरस्तारण्यवासीनमेको जलभुनिनापराधवर्ते पितामयी स्वाम शरण प्रसन्ना ज्ञान समेतायनो पुत्रे की तन्मयतया सर्वभिनेतु तं सर्वभूतैर्जनम्
भगवान नितिन देवी के प्रादुर्भाव का दिन शादी के दिन इसी महीने में शादी के दिन चतुर्दशी के दिन भगवान नितिन देव प्रकट होकर के दिवस में तत्व का वर्ष किया था। प्रहलाद नारायण की रक्षा की हम लोगों से इसको आरम्भ किए श्रीमदभागवत में इसका वर्णन दिया है। तब हमने शाम को थोड़ा सा बताया उसका यह है भागवत में जिस तरह जितनी भी सर्वकालीन समस्याएं हैं सर्वकालिक और सार्वजनिक समस्त लोगों और सार्वकालिक जितनी भी समस्याएं हैं उनका सर्वकालिक समाधान नहीं है। ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान भागवत में नहीं है, ऐसे मालूम नहीं पड़ता। ऐसा तो मिथोलॉजी जैसा ही मालूम पड़ेगा, कहानी नाटक वगैरह, किंतु विश्व में इसके समान दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है को प्रमाणित माना जाता। महाराज युधिष्ठिर जी की सभा लगी हुई थी, दुर्योधन शिशुपाल और बड़े बड़े आराधन विद्यार्थी सब राजा हो सकते हैं, इन्होंने सप्तम में यज्ञ किया था, अब उसकी पूर्णाहुति होनी बाकी थी, अब अंतिम पूर्णाहुति होनी थी। उस समय सभापति कौन हो, इसके अधिनायकत्व में ये पूर्णाहुति बन सकता। नकुल कादेव ने ये कहा, प्रस्ताव किया, जगत गुरु कृष्ण स्वयं भगवान ही उसे अभिनय कोई अध्यक्ष जितने ऋषि थे व्यास नारद इत्यादि और भीष्म पितामह ने इसका अनुमोदन किया। दूसरा पक्ष था दुर्योधन वाला, कपूरी दुशासन कर्ण दुशासन शिशुपाल ग्रंथ कपूर इत्यादि इसका विरोध किया और उन लोगों ने यही अगुआ होकर के कृष्ण की निंदा करने लगा। ब्राह्मणों को ऋषियों को जिसने नारद ऋषि व्यास की है उनको सभा का सभापति बनाना चाहिए। एक ग्वाले का जिसका चरित्र ठीक नहीं, नगर में कौन बनता क्या है, माता पिता का ठीक नहीं, इसकी आगे पूजा नहीं होता और इस प्रकार से वो गाली बनाऊ का मिलता। उस समय में भगवान ने चक्र से उसका बड़ा कर 100 अपराध करने के बाद उसमें महाराज युधिष्ठिर बोले, नारदी से बहुत कठिन कठोर तपस्या करने पर भी भगवान का यह पद नहीं मिलता है और उसने भगवान को गाली दी और भगवान ने इसको सुगति देकर के वैकुंठ की गति दे दी, सारी व्यक्ति दे दी, ये कैसे हुआ, इसको तो नाश भोग करना चाहिए। दूसरी बात, हमको एक संदेह हो रहा है जो सब लोगों के लिए संदेह का विषय है, भगवान सब में सम है, सब प्राणियों के लिए बराबर है, समदर्शी है, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं हो, स्वयं आनंदमय है, उनको किसी से धार नहीं है, उधार नहीं है और उनको किसी विषय से डर नहीं, फिर किसी का पक्ष क्यों लेते हैं, देवताओं का पक्ष लेकर के असुरों का निधन करते हैं, क्यों है, हमारी बुद्धि नहीं समझ जाए। सब इस विषय पर हमने कुछ थोड़ा सा आज थोड़ा सा बोल करके आगे बढ़ेंगे। भगवान ने ये विषमता किस लिए दिख पड़ती है, किसी को क्यों मारेंगे, किसी का किसी को प्यार करते हैं, प्रहलाद का पक्ष लिया है ना तो मारा, देवताओं का पक्ष लिया रावण को मारा, शिशुपाल का पक्ष लिया, ऐसा क्यों किसी के लिए बदला। देखो भगवान सब समय सम है, वो विषम नहीं है, सूरज आकाश में उदित होता है, उसकी छाया जल में पड़ती है, फल में पड़ती है, शिक्षा में पड़ती है, अवदाता में पड़ती है, वो सभी एक है, दर्पण में भी दिखाई देता है, पानी में दिखाई देता है, इस पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है, काट पर भी पड़ता है और दर्पण में भी पड़ता है, जल में भी प्रतिबिंबित होता है, तो उसका प्रतिबिंब या जो कुछ है उसका प्रभाव एक ही जैसा होता है, सब में तो है, इसलिए भगवान एक है, सबके प्रति समान है, उनका न कोई प्रिय है न कोई वैद्य है, कोई भी नहीं, सबको संभाव से सबका कल्याण चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा दिखता है, इसलिए आधार के अनुसार तीन गुण जगत में है, सात्विक राजसिक और तामसिक, ये प्रकृति के हैं, भगवान के नहीं है, सात्विक राजसिक और तामसिक ये तीन गुण है। जिस समय सात्विक गुण बढ़ता है तो मालूम होता है कि भगवान उसमें प्रवेश करके सबको गुण का पालन कर रहे हैं, कभी राजसिक गुण में उपस्थित होकर के राजसिक जो पशु लोग हैं उनको बढ़ा देते हैं और देवताओं को परास्त कर देते हैं और कभी राक्षसों को बढ़ा देते हैं। तो ये भगवान का दोष नहीं है। तब हमने बिजली का उदाहरण लेकर के बताया था। अब इसी को समझना है। जैसे जब लोग देवता लोग सत्वगुण में प्रतिष्ठित होते हैं, भगवान के लिए प्रार्थना इत्यादि करते हैं, तो भगवान इसमें प्रवेश करके उनको वर्जित करते हैं और सब लोग असुरों को जीत लेते हैं उनके विपक्ष। किंतु सत्वगुणों का प्रधान गुण है भोग करना, इन वस्तुओं का विषयों का भोग करना, सत्वगुण। इसलिए देवता लोग भोगी बन करके जब अहंकार में मस्त हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं और असुर लोग दिनहीन होकर उनसे परास्त होकर के और हाथ जोड़कर के भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, उस समय वो देवताओं से हट करके असुरों में प्रवेश करके इनको विजयी बना करके उनको हराते हैं। इसमें देवता को हार जाते हैं और असुर लोगों की नहीं समझ जाते। गुरु का प्रधान यह है, व्यक्ति का प्रधान नहीं है। किसी को समझो, जब तक देवता लोग सत्वगुण में प्रतिष्ठित हैं तब तक भगवान उनको बढ़ाएंगे और यदि वो भोगों में आसक्त हो गए, देवता लोग स्वर्ग इत्यादि में तो रहते हैं, भोगों की प्रधान कारण इसलिए प्रधानता हम लोग भोगों में अत्यंत फंस जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं, गुरु का आदर नहीं करते, भगवान ब्राह्मण जी का आदर नहीं करते, तो क्या होता है उस समय में वो दुर्बल हो जाते हैं, भगवान उनको छोड़ देते हैं थोड़ा। और जो अशुभ लोग उस समय हारे होते हैं पहले से, तो अब गरीब न गई नहीं अब हो जाते हैं और होने से उनका ये पक्ष ले लेते हैं। उस समय प्रार्थना है प्रभु हमारी रक्षा करें बच्चे न्याय, और उनको रक्षा की जरूरत नहीं, देवताओं की मूर्ति अभिमानी हो जाते हैं, इसलिए छोड़ करके भगवान प्रकाशित होकर के उनके द्वारा उनको और ये लोग पढ़ते। कभी कभी इन लोगों का भी असुरों का भी जैसे कभी काल में यह राक्षस अधिकांश लोग हैं जो भगवान का भजन नहीं करते, दूसरों को नहीं करने देते, कोई में गुण नहीं है, सब समय लड़ाई झगड़ा मार काट लगे रहते हैं, ये तांत्रिक गुण है, ये राक्षसों का जपों का ये सब। तो उस समय में उन दोनों को अहंकार बस कुछ अलग हो जाते हैं भगवान से, ये लोग बढ़कर क्या उन दोनों को भी प्राप्त करते। जैसे ब्राह्मण सत्यवादि के पहले सत्यगुण कई काल में वो शूद्रों से भी गर्भित हो जाते हैं, मांस मछली खाना, झूठ बोलना, चोरी करना, यहाँ तक कि गोहत्या भी कर देते हैं, गाय को लेकर के बेच देने का टाइम नहीं होता। इस तरह से जो सत्य प्रधान लोग थे वो तांत्रिक होकर के भगवान प्रभु को छोड़कर और उन लोगों का ये गुणों का है। जब जिस गुण की अधिकता होगी बढ़ाएंगे तो दूसरे गुणों को प्राप्त होगा। इसलिए भगवान में है ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसमें भगवान नहीं है, स्थिति से लेकर के ब्रह्मा तक सब में भगवान है। और बिना भगवान की किसी की सत्ता नहीं रह सकती, ना कोई कर्म कर सकता है। जो कुछ हम लोग करते हैं अभी सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं कौन नहीं, इससे तो प्रबल मन है, मन जैसा संकल्प भी विकल्प करता है उसके अनुसार भी कार्य होता है। किंतु इसमें जीवात्मा न रहे तो मन भी काम नहीं करेगा, किंतु इसमें प्रभु नहीं रहे परमात्मा तो ये जीवात्मा भी काम नहीं करेगा। इसलिए जीवात्मा परमात्मा की सत्ता से और शक्ति से जीवात्मा में सत्ता और शक्ति है, और जीवात्मा की वजह से इस मन में और जीवात्मा मन की सत्ता से इस शरीर में अभी सुरक्षित रह सकता। बिना प्रभु की इच्छा के, बिना प्रभु की सत्ता के कुछ भी काम नहीं हो सकता, यह दुरुस्पष्ट है। प्रभु सम में है तो असुरों में भी है, राक्षसों में भी है, स्थितियों में भी है, सब जगह है। तो भगवान क्या असुरों में रहने से राजनीतिक हो गए और राक्षसों में रहने से तांत्रिक हो गए और देवताओं में रहने से बन गए और भक्तों में रहने के निर्गुण बन गए? एक ही प्रभु तो सम्य है,
बिना उनकी सत्ता से दुष्कर्म भी नहीं होगा, कर नहीं सकता भी। तो उसके लिए प्रभु को दोष है या किसका दोष है, किसी पर विचार नहीं। प्रभु में भी क्षमता नहीं, वो सब सम है। ये गुणों का जो दोष और इसको समझाने के लिए एक इतिहास बनता है, दार्शनिक विचार है। दार्शनिक विचार से साधारण आदमी नहीं समझेगा, दार्शनिक व्यक्ति समझेगा। किंतु साधारण व्यक्तियों के लिए इसके लिए उदाहरण चाहिए, कहानी चाहिए, कथा चाहिए, इसके बाद में वो भी बतला रहे हैं। देखो ये एलिस शिशुपाल जो अभी मरा, ये मरा ना क्या हुआ, भगवान को गाली दी और भगवान ने उसे मार दिया। जैसे को पैसा हुआ ना सीट फाट पैस हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारे देखने का भ्रम है। उसने गाली दी, वो गाली भगवान को नहीं देती, क्यों, प्रकृति से अतीत है, भगवान का सब पर दया है। भगवान ने क्या किया, कोटि जन्मों में उसका उद्धार होता कि नहीं, माया से अतीत होता कि नहीं, उन्होंने जल्दी से उसके शरीर को हटा दिया और हटा करके मुख्य जगह का अपना पासन कर, ये भगवान की दया। वो मारना नहीं हुआ, यदि हमने अपने बच्चे को एक थप्पड़ मार करके 1 करोड़ रुपया दे दिया तो ये मारना हुआ क्या, नहीं। उसी तरह से हमने दूसरे लोगों को कहा, जैसे शुभ आदर के साथ में उनको बैठाया और अपने बेटों को कहा जैसे यहीं पर खड़े रहो, सबको पानी दो, वो सबका सर्विस कर रहा है। देखो औरों को कुछ नहीं दिया और कहा हमारे मरने के बाद में हमारे धन का संपत्ति का तुम उत्तराधिकारी बनेगा, तो उसको खड़ा रहना, उसको सेवा जो कराए, ये क्या चीज है, वही चीज है। इसी तरह से भगवान किसी के प्रति द्वेष नहीं करते, मरने पर भी उसको मुक्ति दे देते हैं, जो कठिन साधना के द्वारा नहीं होता। इसी चीज को समझाने के लिए वो बता रहे हैं, किसी भी प्रकार से निर्भय रहना, भय नवा स्नेहामी ने समझा कथन की, किसी भी भाव से, शत्रु भाव से, बिना डर का शक्ति के भाव से, भय से हो, स्नेह से हो, काम से हो, भक्ति के द्वारा हो, किसी प्रकार से भगवान में चित्त लगाओ, किसी भी प्रकार से तुम्हारा कल्याण होगा। शिशुपाल ने भगवान की निंदा करते करते उसमें आवेश हो गया शत्रु भाव से और उसकी मुक्ति हो गई। कंस ने भय के द्वारा भगवान को चित्त लगाया और उसका उद्धार हो गया। गोपियों ने काम के द्वारा भगवान की आराधना की और भगवान को सब सुख से पाया। नाग जी त्यागी ने भक्ति की, उन भगवान को पाया और पांडवों ने अथवा द्वारका वासी लोगों ने स्नेह के साथ में उनका भजन किया, अपना बंधु माना, किसी ने पुत्र माना, भाई माना, फल रूप कर दिया। इससे किसी प्रकार से जैन जैन उपाय है उसने मनोमिल, किसी भी प्रकार से भगवान ने चित्त को लगाना चाहिए। इन पांचों में से पूरी की थे सभी स्नेह और काम को एक संबंध को स्नेह में जोड़ दिया, इसमें संबंध का नहीं, दूसरी जगह संबंध दिया है और स्नेहा संबंध एक अब शिशुपाल का पूर्व जन्म का देखिए, जय जय वो श्रेणक थे, तो जय जय देवता देवता भगवान के पार्षद बैठ में। एक दिन वहां पर सनक कुमार थे, उन्होंने भगवान के सामने उनको जाने नहीं दिया था, गंदे थे वो, मैं तुम बैठक का रहने योग्य नहीं, भगवान को किसी से डर पड़े है, हमसे डरेंगे भगवान, हम भगवान का क्या निश्चय कर सकते हैं, तुम लोग यहां रहने योग्य नहीं। जाओ तुम लोग तीन जन्मों तक असुर कुल में जन्म लेगा, इसके बाद में तुम्हारा बेटा। इतने उन्होंने जोग माया को हटा दिया, सनक संबंधन के बाद में देखा है हमने बैकुंठ में आकर के ये तांत्रिक भाव किया और हमको हमने इनको तांत्रिक किए और वो चारों दोनों जाति जाए सोच रहे हैं हमको ऐसी भावना क्यों आई इनको रोक दिया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, उसी ने लोगों का उद्धार करना है इसलिए तुम्हारे में अंदर नहीं तुम लोग इच्छा थी हमारी सेवा करने, तुम लोग हमें जीवन का साधन करने के लिए अच्छा चाहता बिना सपन भाव से नहीं। नहीं होगा इसलिए मैंने इस तरीके से तो होगा नहीं, जब माइक करी हम देंगे फुल शरीर उसमें तुम लोग हमारा सब हुआ और तीन वो जन्म तक हमको युद्ध में दी जाता स्वागत। इस तरह से भगवान ने जय जीवों को विजय किया। हृणाकशिपु और हृणाक्ष ने पहला उनका जन्म, हृणाकशिपु ने बहुत कठोर तपस्या की 60,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी वहां पर आए, क्या बात चाहता है बाबू ब्रह्मा, उसने कहा जी बाबू जी को मिल दीजिए, मैं जल में नहीं मरू, फल में नहीं मरू, आकाश में नहीं मरू, कहीं मेरी मृत्यु न हो। जल में मृत्यु नहीं हो, फल में न हो, जमीन पर न हो, आकाश में भी नहीं, अग्नि में मृत्यु मृत्यु नहीं, कहीं मेरी मृत्यु न हो, किसी दिन में मेरी मृत्यु नहीं हो, रात में मृत्यु नहीं हो, ब्रह्मा के बनाए हुए किसी प्राणी से हमारी मृत्यु नहीं हो, किसी महीने में नहीं हो, आकाश में नहीं हो, पृथ्वी पर नहीं हो। इस तरह से सभी उन्होंने अमर होने का वर्णन लिया। उन्होंने कहा क्या मत लौट करके गया और इसी बीच में जितना तपस्या कर रहा था उसकी रानी गर्भवती थी, इंद्र भी आए और असुरों को परास्त कर उसकी स्त्री को पकड़ लिया, कया दी गर्भवती स्त्री और लेकर के जाने लगे स्वर्ग में। बोले जी तो वहां स्वर्ग में जाएंगे जब इसका बच्चा प्रसव हो जाएगा, बच्चे को काट देंगे, इसको छोड़ दे, स्त्री का वध नहीं करो, ये तो हिरण्यकश्यप के समान या उससे भी अधिक बलशाली होगा, ये हम लोगों को और अधिक पीड़ा कर अत्याचार करें, इसलिए मारना नहीं। जब आकाश में लेकर के गए नर्क ऋषि घर से आ रहे थे, बोले जी कहां इसको ले जाता है, हम इसका वध करेंगे बच्चे का जब ये प्रसव इसकी मैया करें, मैया पर छोड़ें, अरे इसमें महाभागवत हैं, इनका तुम क्या विश्व का कोई भी प्राणी वध नहीं कर सकता, भगवान का ये प्यारा है, आप इसे छोड़ दीजिए। उन्होंने देवी को प्रणाम किया, मैंने गर्भ को और उसकी परिक्रमा लगाई और उनको छोड़ दिया। नारद जी उसको लेकर के कुछ ही लोग अपने आश्रम में आए और वहां पर अपने आश्रम में रख दिया, 60,000 वर्ष तक रखा जब तक ये हिरण्यकश्यप लौट करके नहीं आया। बड़ी सेवा की उनकी पत्नी ने, हिरण्यकश्यप की दया भी नहीं, मैंने कहा कि कुछ मांगो, मैं यही मांगता हूं, मांगती हूं कि जब मैं चाहूं तब हमारा दर्द प्रसव हो, अपने काल का 9-10 महीने में नहीं हो, जब मैं चाहूं तब, क्योंकि हमारे पति आ जाएंगे उस समय इसका प्रसव होने से चिंता नहीं करता, मैं कभी मेरा पति बच सकता चले। और उन्हीं को लक्ष्य करके दिन रात हरी कथा सुनाते थे, वेद उपनिषद उपनिषद भागवत पुराण सब कुछ सुनाते थे, भगवत भक्ति की बात सुनाते थे। इसलिए महा उनका संस्कार हुआ और वो परम भक्त हो गए। इसके बाद में हिरण्यकश्यप के चार लड़के हुए, ये सबसे छोटे थे, इनमें समस्त सारे गुण थे, सत्यवादी, सहिष्णु, परोपकारी और सर्वोपरि भगवत भक्त। ऐसा कोई भी शुभ गुण नहीं था जो इनमें नहीं। बड़ी तीक्ष्ण मेधा थी, एक बात सुन लेते उनको सब कुछ किया गया। एक दिन जब ये पांच वर्ष के हुए, उनको गुरुगृह से बुलाया और बोले देखो तुम अपने गुरु के घर में जो कुछ पढ़ा है यह बतलाओ, तुमको क्या चीज अच्छी लगी। उन्होंने कहा
सब
साधु मन में अचुर भाग्य देहियान सदा उचित में धीयान असर अंगकूपम बड़ी निर्भीकता मेरे साथ में उनको ये कहा, उनकी गोदी में लेकर के पूछ रहा था। संसार में सबसे अच्छा मैंने यही समझा साधु मन में असुर बन, हे असुर में श्रेष्ठ पिताजी हमने तो यही समझा, सबका काल यही हमने समझा। अच्छा इस असार संसार में जो दुखों का सागर है इसको छोड़ करके विश्वात्म पातम जिसमें आत्मा का विनाश हो जाता है, आत्मा का पतन हो जाता है और संसार में आदमी खटकता पिता है लाखों करोड़ों जन्म, कभी सुख कभी दुख, कभी देवता कभी मनुष्य कभी गंधर्व, कभी पीटी कभी पैखाना कहती है, कभी हाथी कभी सुअर कभी गधे, विभिन्न योनियों में घूमते लाखों करोड़ों जन्म, कहीं भी सुख और शांति नहीं है। इस मनुष्य जन्म में यदि भगवत भजन नहीं करेंगे तो सुख शांति नहीं, यदि भगवान का रियलाइजेशन नहीं हुआ, उनकी अनुभूति नहीं हुई, सबसे वही पीड़े मोकड़े और शुभरात्र अध्ययन में जन्म। इसलिए इसको छोड़ करके शिक्षात्म पातन गृह अंधकूपम गृह रूपी अंधकार को छोड़ करके सबों के संग में भगवत भजन करना ही सबसे श्रेष्ठ कर्म था। बिगड़ गया ये इस हरि ने ही तो हमारे भाई को मारा, मैं इसका बल करूंगा। लक्ष्मण को किसने सिखलाया, कौन शिक्षा दी, शिक्षा तो दिया इनके गुरुओं ने, संडा मर्द ने गुरु को बुलाया, तुमने इसको शिक्षा दी, अभी तुम्हें दुख का काम दंड देता हूं। हमने कैसी शिक्षा दी, ये तो बालक स्वभाव का भी ऐसा बोलता नहीं, बालक ऐसे स्वभाव बोलेगा, जरूर तुमने सिखलाया। न कभी मैंने तो कभी नहीं सिखलाया, बच्चे से सीखा, तुमको किसने ऐसा सिखलाया, डांडा गप्ता जाओ स्कूल में ले जाओ, कभी कोई ऋषि न मिल जाए, घर में टीका करने वाले ऐसे कुंड गले में मारा हो और हाथ में हरियाणा की झोली हो और बगल में भागवत, ऐसे व्यक्तियों को हमारे घर में राज्य में बताने देना और बच्चे से मिलने मत देना। यह जो बुद्धि लोगों की बुद्धि को खराब करते हैं, घर में बुद्धि करके भगवान का नाम भजन बहुत अच्छा है ये कहा करके और लोगों की बुद्धि को खर्च कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का मुंह को हमारे घर में बताने कुछ दिन पढ़ाने के बाद में थी, कुछ दिनों के बाद में उनको बुलाया प्रहलाद महाराज ने पूछा बेटा आप तो स्कूल में पढ़ सके आया बतलाओ, तो तुमने जो कुछ पढ़ा उसमें से बतलाओ ये कौन सा चीज है, किसके प्रति तू आ सकती है, कौन सी बात अच्छी है। फिर गोदी में लेकर के मस्तक सुना, फिर रक्तिया बोला प्रहलाद महाराज जी फिर इनने भी होकर के कह रहे समर्थन कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दक्षम सखा मंदिर इति पुंसाचिता विष्णु विष्णु भक्ति के नवलक्षणा क्रियेत भगवती अध्यात्म मन्यते। मैं तो यही समझता हूँ जिन्होंने गुरु के शरणागत होकर उनके चरणों में सबसे पहले शरणागत हुए थे, अब उनकी कृपा से शरणागत होकर सब कुछ भगवान के लिए समर्पण कर दिया। और फिर उन्हीं को पाने के लिए जो भगवान के नाम रूप भूल मिला का श्रमण, उसी का कीर्तन, उसी का स्मरण, प्रभु का ध्यान, चिंतन, पद सेवा, राष्ट्र भाव से सख्त भाव से उनकी सेवा, अनंत में उनके चरणों में सदर प्राप्त हुए आत्मा पर, यही महापुरुष है। इसका सूत्र मैं कुछ नहीं जानता, सुनकर और तो भी बच्चे को रोचक नहीं दिया। विष्णु कौन? अरे जिसको देखते हैं वही तो, हमने तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हारी भैया ने पालन पोषण किया, मैंने तुम्हें खिलाया, कपड़ा दिया, ये भगवान कौन? भगवान नाम की कोई चीज नहीं, जिसे हम नहीं देखते हैं उसको नहीं मानते हैं, भगवान नाम की कोई चीज नहीं। मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया, मैं इस बारे में भगवान हूँ, मेरे अतिरिक्त भगवान नहीं, मैं भगवान हूँ, तुम्हारी भैया का भगवान हूँ, तुम्हारा भगवान हूँ, तुम्हारे भाइयों का, प्रजा का, सबका, विश्व का मैं भगवान हूँ, और कोई भगवान नहीं। मुख्य लोग कहते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज, शास्त्र में विकास का लिखा गया भगवान नाम का कोई चीज नहीं है, पुरुषार्थी सब कुछ है, मैं पुरुषार्थी हूँ, मैं कर्म करने वाला हूँ, नहीं भगवान, भगवान पड़े कोई चीज है। यह बात गलत है, कहां से सीखा? बेच लाओ, देखा दो चार बेच दिया कुछ नहीं हुआ, कल इसे मार डालो, घर में कुल में कलंक पैदा हो जाए तो उसको मार डालना ही अच्छा है। ये हमारे कुल में संसार रूप में जन्म लिया,
चंदन
जैसे चंदन है ना, चंदन को काटने के लिए कुल्हाड़ी में एक बेंच चाहिए, चंदन को काटने चंदन के गाल को ले लिया और उसमें लगा दिया और बड़े जोर से काट, केवल कुठार से ही, केवल लोहे वाला से नहीं कटेगा, उसके लिए कुठार में बेंच चाहिए, डंडा चाहिए, सब जो उसे ऐसे मारेगा। तो ये हमारे चंदन कुल में ये कुठार के समान है, बेंच के समान है। लकड़ी को काटता है कौन? कुठार, किंतु सहायता कौन कर रहा है?
लकड़ी
का। इसलिए हमारे कुल में ये प्रहलाद असुर कुल में लकड़ी बनकर के हमारे कुल को ठंड करने वाला। यदि घर में कोई कांच का पौधा उगाए तो क्या करना चाहिए? यदि शरीर में कोई अंग में कोई ऐसा अंग सड़ गया उसको काट दो ऑपरेशन से, नहीं तो तुम मरेगा, गैंग्रीन होकर के मरेगा, इसलिए इसको काट देना ही अच्छा है, नहीं तो तुम मरेगा, इसे इसको मार डालना ही अच्छा, और बच्चे ना खराब हो जाए। संसार के जितने भी अशुभ लोग हैं ऐसा समझते हैं, ये साधु लोग बेकार दूसरे को तंग करते हैं, उनका ये सब खा जाते हैं, और ये लोग दूसरों का जीवन और घर बर्बाद कर देते हैं, इसे इनको दूर रखा है। भगवान नाम का व्याज ये प्रहलाद महाराज, और प्रहलाद का विचार कैसा है? हिरण्यकश्यप के ठीक विपरीत, देवताओं का विचार है, भक्तों का विचार है। अब यहाँ पर भक्ति में और अभक्ति में चल रहा है, प्रहलाद को मारने की चेष्टा थी किंतु मार नहीं सका, यार शाम से कटवाया, सब कुछ किया, जब नहीं कुछ कर सका, इतना कि छोटा सा बालक और मैं इसे मार नहीं पा रहा हूँ, और निर्भीक हमारे सामने खड़ा है, तो उसको खूब हुआ, जलने लगा किंतु कुछ कर नहीं सका, सांपने लगा और फिर सांपने लग गया। कैसा व्यक्ति? वज्र के समान शरीर, किसी के द्वारा मरेगा नहीं, ऐसा कर रोग नहीं, ऐसा व्यक्ति कहीं किसी से मेरी मृत्यु ना हो जाए। दोनों उनके जो शिष्य गुरु थे संड माने सांड, वो पगडंडी नहीं पकड़ता, वो कैसा चलता है? बिना पगडंडी के साथ बस करो करके चलता है, उसका गोबर किसी काम में नहीं आता, खूब पतला होता है, किसी काम में नहीं आएगा, और जिसको देखेगा क्या करेगा, ऐसा टेढ़ा करके देखेगा और मारेगा। ये लोग हैं सांड अभिमानी। और अमर्थ क्या? आत्मा ने शुद्ध अम अर्थ अंधकार अज्ञानकार, ये दो, एक अंधकार है एक अभिमान है, उन्होंने कहा कि हमें पिताजी बाहर गए हैं, उनको आने दीजिए और हमको दे दीजिए, हम फिर से ले जाएंगे, हमारे पिताजी इसको पढ़ाएंगे, ठीक कर देंगे। आप डरते क्यों हैं? आप शिष्य को ब्रह्म तक को नतमस्तक कर दिया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। पिताजी आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये छोटे से बच्चे को के लिए आप डरने की कोई जरूरत नहीं, शांत हो जाएगा, लेकर के चले गए बच्चे से पिताजी, बेटा ये तो बदला है, तुमको किसने सिखलाया? ऋषि मुनि तो कोई भगवत भक्त तो आते नहीं है जो तुम्हारे बुद्धि को कलुषित कर देंगे, बिगाड़ देंगे, किसने सिखलाया? तुमने भी उनसे पिता का ताकि हमने तो सिखलाया नहीं, गुरुपुत्र ने कहा जो मैंने तो सिखलाया नहीं, किसने सिखलाया? मैंने कहा तुम यहाँ शिक्षित बतला कि किसने सिखलाया? क्या तुम्हारे गुरुपुत्र ने कार्य नहीं, किसने सिखलाया? उसी के लिए फिर बतला रहे हैं। बंधो केने सत्य विपक्षम स्वयता असारम ग्राहिता बालो मां अनादृत दुर्मते हे दुर्मते हे मूर्ख हे ब्रह्म बंधो हे दुर्मते, अरे मैंने तुमको जीवन भर पाल पोषण नहीं किया और हमको छोड़कर के तुम विष्णु का पक्ष लेगा, विष्णु का पक्ष लेकर के क्या होगा? उसका भी पक्ष नहीं ले सकता, उसको भी तुम छोड़ देगा जब हमारा ही पक्ष नहीं किया। इसलिए बताओ तो तुमको किसने ये ऐसी शिक्षा दी? उसी के लिए उनके गुरु जी उत्तर दे रहे हैं, हमने नहीं सिखलाया, अपने आप सीखा, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न हमने सिखलाया न किसी दूसरे ने सिखलाया। सुसो भदत्त एस समेन्द्र शत्रु, हे इंद्र के शत्रु, इंद्र को पराजित करने वाला तुम्हारा पुत्र तो नैसर्गति अयम मति रथ चराजन, नैसर्ग स्वाभाविक जन्म से ही इसकी स्थिति है, प्रभु की भजन का भजन करता है, इसमें किसी ने ऐसी शिक्षा नहीं दी। उसी समय गुरु पुत्रों को करके सरदार मार रहे, कैसे ऐसे हुआ बदला नारद जी कह रहे हैं उपाख्यान युधिष्ठिर महाराज मति नकृष्ण बड़ो सब होगा मिथो भी पद्य तुम्हें बताना आदांत बोधी निश्चितानु कमीशन पुनः पुनः चर्चित कर जो कि पुनः पुनः चर्चित को चरण करने वाले कभी चरण करने वाले माने क्या जैसे कुत्ते हैं उनको खिला दो अभी खाने के बाद में जाएंगे घास खा लेंगे और घास खा करके क्या करेंगे उल्टी कर देंगे अब फिर कोई खाएंगे खाए खिलाए उनको फेंके हुए को भूमि किए हुए को फिर से खाए उनको तनिक घृणा लग जाने नहीं गधे कुत्ते ऊँट इत्यादि कुत्ता को कहीं से हड्डी मिल गई लेकर के चुपचाप देखेगा जो कोई कुत्ता तो नहीं देख रहा और कोई निर्जन स्थान में लेकर के भागेगा और यदि बीच में कुत्तों में देख लिया तो क्या करेंगे दस पांच उस पर आक्रमण कर देंगे और वो धूप दबा करके जब काट रोट ले लिया अभी से तो धूप दबा करके छोड़ करके वो भागेगा और कहीं दूर से देखेगा उन कुत्तों को और जिसने लिया फिर वो सब कुत्ते उसके ऊपर लग जाएंगे और यदि कुत्तों ने नहीं देखा तो वो गड्ढे में जाकर के चुपचाप आराम के साथ में उसको चूसता है हड्डी में क्या कुछ नहीं कुछ मांस का गंध केवल है वो दांत से काटते काटते उनके दांतों से वस्तुओं से खून आता है अब वो समझता कि हड्डी के खाने सूचने से ये हमको नमकीनता लग रहा है किंतु अपना ही वो रस पीता है अपना ही खून उसको मालूम नहीं होता तो ऐसे संसार में पुनः पुनः चर्चित करने वाले अथवा पुनः पुनः जन्म लेने वाले मरने वाले पुनः पुनः शादी विवाह करने वाले और इस संसार का पालन पोषण करके फिर मरने वाले उसी में सुख दुर्ग करने वाले इसी चर्चोल चला रहे हैं एक ही जन्म नहीं आज ये पहली बार हमारी शादी नहीं हुई करोड़ बार सांप होकर के आए तो सांप भी हमारी सुअर हो गए सुपरी हो गए हाथी हुए तो हथी इसलिए पूर्णता जुड़ा सब ये पहला बार नहीं है संसार में ऐसे लोग जो उठाए स्वयं मिथो भी पद्य गृह बताना जो गृह धर्म में ही लगे हुए हैं। कैसे गृह धर्म में लगे हुए हैं? यही बात है, स्त्री से शादी करके विवाह शादी करके और सेंटर में स्त्री को और बच्चों को अति आक्रमता का सब काम दिन रात उसी के लिए करते हैं। और एक गृहस्थ होते हैं वो क्या करते हैं? ठाकुर जी को घर में रखते हैं, स्त्री भी भगवान की सेवका में भी भगवान का सेवक, पति भी है भगवान का सेवक। ये कृष्ण का संसार का वाता है, गृहस्थ लोग ऐसे, किंतु आजकल का गृहस्थ भी ऐसा गृह में भी बन गया। होना चाहिए था गृहस्थ हो गए गृह में भी, क्यों में भी बीच में एक लकड़ी डालकर और 10-5 बैल मिला करके जोड़ देते और अंतिम बैल को लकड़ी से जोड़ देते और उसको चलाते हैं तो उसमें गेहूं इत्यादि पहले इसी तरह से भूसा होता था, अन्न को उसमें अलग करते। तो ये बीच में सेंटर में अपने परिवार को रख करके दिन रात उसी के लिए काम करते हैं, मर करके फिर बैठा ही। ऐसे लोगों की बुद्धि से, ऐसे लोगों के परमात्मा से भगवान ने बुद्धि नहीं लगती। मति न कृष्ण पर सब हम हजार उपाय करेंगे कृष्ण में मति लगे, ये नहीं होगा। दूसरे भी यदि चेष्टा करेंगे उनके परमात्मा से भगवान में चित्त लगे नहीं लगेगा, किंतु ये दूसरे कैसे? मिथो भी पद्धे विषमतानंद गृह पत्ने जो फसे हुए हैं और आकांत वो भी विषतान कभी अदांत वो भी अदांत माने अजितेन भी जिनकी इंद्रियां उन्होंने जय नहीं कर दिया है। ऐसे लोग स्वेच्छाचारी लोग जो गुरु का उपदेश नहीं मानते, शास्त्रों के उपदेशों को नहीं सुनते, भजन नहीं करते, ऐसे लोगों की इंद्रिया शांत होती है, ये लोग कभी भी सुख शांति नहीं पाते। इनकी बुद्धि से भगवान में चित्त नहीं लगता है। किनकी बुद्धि से होता है? जो भगवत भगवत अनुभूति हो, शास्त्रों का शास्त्र जिन्होंने हृदयंगम किया है, ऐसे लोगों की बुद्धि को लेकर के यदि भगवान का भजन करेंगे तब तो भगवान की तरफ ना प्रहलाद महाराज की मति भगवान में कैसे लगी? ना ये रावण का भाई विभीषण, विभीषण की मति राम ने कैसे लगी?
हनुमान की विवाह,
हनुमान की विवाह। इसी तरह से जहां पर हम देखते हैं ये वाल्मीकि जी की भगवान में मति कैसे लगी? अजामी की कैसे मति लगी? किसी ऋषि के द्वारा। इसी प्रकार से व्यास की मति लगी कैसे? नारदी के
द्वारा।
ध्रुव का कैसे हुआ? नारद के द्वारा। जितने भी हैं संसार में जिनका उद्धार हुआ वे भक्तों के हुआ, उनके संग नहीं हुआ। यहाँ तक राक्षस से लेकर के जटायु इत्यादि तक भी ये सब सत्संग में जाकर के नहीं, बिना सत्संग के बिना गुरु की सेवा के लिए कभी भी मति नहीं लग सकती। उन्होंने कहा कि हमको तुम अशुभ बतलाता है, हमारे गुरु बेदाके हैं, हमारे गुरु जी संत वो है शुक्राचार्य जो मरे हुए को जीवित कर देते हैं और उनको तुम मूर्खक आता है और बता ये संसार में रखे फटे वाले हैं बिगड़ गया। अरे हाँ बात मैं ठीक कर रहा हूँ, न से विदु पाठ करते हुए वो नहीं समझते कि भगवान की सेवा करने में ही हमारी गति है, हमारा जीवन सफल है। वो लोग क्या करते हैं कि ड्रीम टाइम भी नहीं खाना भी वो बहुत कर इसी जगह सुखी रह सकता है। भाई जो कहें गुरु किसी का संपत्ति ले लो, जरूरत है मैया बुरी हो गई है वो दूसरे बच्चे को अपनी संपत्ति देना चाहती है, गोली मार करके उसको पानी ले लो और अपनी पिताजी को मार डालो कोई बात नहीं है, सुख चाहिए लोग पर लोग कुछ नहीं है ये बेकार का है, ऐसा लोग आते हैं तो कहते हैं नते विदु पात्र। वो नहीं जानते कि स्वास्थ्य किसमें है, एक बात संत लोग ही जानते हैं कि स्वास्थ्य किसमें है भगवत है और वो नहीं समझते। वो समझते हैं हमारा स्वास्थ्य रुपये में है, हमारा स्वास्थ्य पैसे में है, हमारा स्वास्थ्य जनबल में है धन बल में है। फिर नकत्व को तो सभी कुछ था, फिर अशांत क्यों? उसी के लिए बता रहे हैं नहीं था मती दूरा से आते बहिरक्ष मानी ना। ये लोग जो होते हैं जो विष्णु का भजन नहीं करते, विष्णु की सेवा नहीं करते, ये बहिरक्ष मानी ना, ये संसारी अर्थ रुपया पैसा इसी में ही अपना स्वास्थ्य इसी के द्वारा सुख और शांति पाना चाहते हैं। वो कहते हैं अंधा धंधे उपज्ञ माना, एक अंधा था ताकि हम दिल्ली चले गए, किस लिए जाएगा, वहां पर लड्डू बड़े मीठे होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। एक दूसरा अमेरिका हम भी चले गए दिल्ली, अरे कैसे चलेंगे, तुम हमारा कंधा पकड़ लो और हम लोग चले। तो एक अंधे ने दूसरे अंधे का लकीर पकड़ लिया और दोनों दिल्ली के लिए चल पड़े। अब दिल्ली निकट आई, अब दिल्ली निकट आई और लड्डू अभी मिलने वाला है। बीच ही में कोई नदी या कोई गड्ढा मिला बहुत भयंकर, तो उसे जो ले जा रहा वो पहले गिरा, जिसको ले जा रहा था वो पीछे से गिर गया और दोनों उसी में जन्म मिल गया। उसी प्रकार से जो अंधे हैं भगवत विषय में नहीं जानते हैं, वो दूसरों को यदि परामर्श देने, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। एक साथ है वो भगवत भजन नहीं करती, विषयों में प्रवक्त है, बहु आई भी बहु यदि भजनशील है तब ये माला को सिले आई माला थे को हम जैसा कहते हैं उसी में तुम्हारा सुख है। एकादशी का व्रत करिए, एकादशी का व्रत करिए तो विधवा करती है दुनिया, जो कर्या करती हैं ऐसी को नहीं करना चाहिए। अरे ये कुछ तिलक लगा रही क्या क्या, ये हमारा भविष्य में किसी ने नहीं किया, हमारे गले में हमारे पूर्वजों में इतने गले में तुलसी लगाई वो मर गया, इसमें सबसे ये सुहाता नहीं है, ये सब नहीं करना चाहिए। देखिए मैं तुम्हें समझाती हूँ, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हारी सास हूँ, इसलिए हम कहती हैं ऐसा मत करो, यदि चाहती हो तो संतोषी मैया की पूजा करो और शंकर जी पर जल चढ़ाओ और कहो कि हमको पुत्र लक्ष्मी और ये सब चीजें मिल जाए। वो कहते मैं तो प्राण दे दूंगी किंतु भजन करूंगी, हम तो ये सब नहीं कर सकते। अब दिन रात उसी के पीछे सब लगेगा कि अभी फंस लूंगा,